रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ हम सब आपको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
हम के इतने उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, इसके बाद भी हम लोगों से क्षमा मांगते हैं। अरे वाह, अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कहानी नहीं, मतलब एक संस्मरण है। वर्णाश्रम अमेरिका के कौन थे, राष्ट्रपति रहे हैं, हाँ ऐसी कुछ था, दार्शनिक तो थे, लेखक थे वर्णाश्रम, लेखक थे, बहुत अच्छे विचारक थे। राष्ट्रपति तो लिंकन थे, मैं भूल गया, हाँ सॉरी। तो वो रास्ते से चले जा रहे थे, किसी सामान्य व्यक्ति ने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने भी उनको झुक के प्रणाम किया। तो उनके साथ वाले बोले कि आप इतने बड़े और उस सामान्य से आदमी को झुक के प्रणाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये बताओ, प्रणाम करना अच्छा काम है या बुरा? कहते बहुत अच्छा काम है विनय करना, तो मैं उस अच्छे काम से क्यों वंचित रहूं? बताइए, अगर क्षमा मांगने को हम अच्छा काम मानते हैं तो क्या वो मेरे पास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो जितना बड़ा होगा वो उतना अधिक क्षमा भाव धारण करेगा, इसलिए अगर आप बड़ा मानते हैं हमें तो कृपा करके क्षमा मांगने का अधिकार भी तो दीजिएगा। आप इसका ही अधिकार नहीं दे रहे हैं, बताइए। अब सोच करके बताना, दूसरा प्रश्न लिखना फिर सोच करके। आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ी कोई घटना क्यों सुनाएं हम अपने गृहस्थ जीवन से जुड़ी? आपको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो महाराज जी ने कितनी बढ़िया आपको सुनाई, और हमारी तो ऐसी कोई घटना है ही नहीं। हम इतने महाराज जी बराबर बड़े थे ही नहीं, 75 साल के हुए ही नहीं, हम तो 20-22 साल के थे और हमने कुछ संसार विशेष देखा भी नहीं, और बस चले आए। आचार्य जी की कृपा हो गई हम पर, बस इतने ही है हमारे जीवन के बारे में, और विशेष नहीं है। नवम्बर 83 और साथ में कितने महाराज साहब आचार्य जी भी उस समय, हाँ आचार्य जी के साथ ही तो गए थे उस समय। आचार्य जी की आज्ञा से हम संत 86 से और अलग अलग ग्रुप के साथ बिहार कर रहे हैं। संत 86 तक तो 85 तक का चतुर्मास आचार्य जी के साथ ही किया, और ऐसे ऐसे पास में बैठे हैं आचार्य जी के 80 से लेकर के, तो साथ में ही थे। और उस समय 14 पीछी हुआ करती थी कुल, इतने ही मुनि महाराज जी उस समय, मुनि महाराज जी तो बहुत थोड़े से थे। मुनि महाराज जी में थे समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, हम थे गुप्ती सागर जी और सुधा सागर जी, समता सागर जी और समाधि सागर जी, सरल सागर जी, स्वभाव सागर जी हैं बस। बाकी 4 एलक जी थे, 5 बस इतने ही महाराज जी, ये सब लोग मिलकर के। और कार्तिकी पूर्णिमा पर वहाँ पर पारसनाथ भगवान की सवारी निकलती है, बहुत बड़ा भव्य जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा, उसके पर्पस से गए थे वहाँ पर। तो उस समय वहाँ थे क्या आचार्य श्री भी? नहीं, आचार्य श्री के साथ में ही विहार करते हुए गए थे भैया कलकत्ते। क्यों पूछा आपने, पता नहीं, इतना ही पूछ के रह गए आप, कोई बात नहीं। जिस समय पंच परमेश्वर जी का ध्यान करते हैं, जैसे एक पद ले लिया नमो अरिहंतानम, तो ये कहने पर किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, कृपया बताइएगा। देखो ऐसा है, पिंडस्थ ध्यान होता है, पदस्थ ध्यान होता, पिंडस्थ ध्यान होता है, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान होता है। रूपातीत ध्यान तो आज संभव नहीं है, विचारात्मक हो सकता है लेकिन ध्यानात्मक तो बहुत कठिन है। सिद्धों के स्वरूप का विचार करना, और मेरा भी वैसा ही स्वरूप है, ऐसा विचार कर लेना, ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। लेकिन अनुभूति तो अपन को सिद्धों के जैसी होती नहीं, तो अपने को तो सिर्फ पदस्थ ध्यान हो सकता। कोई एक पद ले लिया जैसे नमो अरिहंतानम, अब हम नमो अरिहंतानम पर विचार कर रहे हैं, हमारी एकाग्रता नमो अरिहंतानम पर ही बनी रहे, इसके लिए हम विचार करते हैं कि अरहंतों का क्या स्वरूप है, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं वे, अनंत चतुष्टय उन्हें किन कर्मों के अभाव में प्राप्त होते हैं, वे कर्म किस स्वभाव वाले हैं, और उन कर्मों का बंध उदय और सत्व कहाँ कहाँ किस तरह से होता है, मैं कैसे उनके बंध को रोकूं, मैं उनके उदय में कैसे जो है अपने परिणाम रखूं, जिससे कि मैं उन कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं भी अरहंत बनने की योग्यता अपने भीतर अपनी आत्मा में रखता हूं। ऐसे जो है अब अरहंत भगवान के चार घातीय कर्मों का नाश हुआ है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, अब ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं और मोहनी के 28 भेद हैं और अंतराय के 5 भेद हैं। इन सब का लक्षण क्या है, इन सब का बंध और उदय और सत्व कैसा कैसा होता है, ये सब जो है विचार करना और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होने पर उनको किस तरह अपने आत्मा की अनुभूति होती होगी, ऐसा जो है जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसी कल्पना करते हैं। ये पदस्थ ध्यान है। फिर बाद में धार पिंडस्थ ध्यान में, पिंडस्थ में जो है भगवान के कमलासन पर बैठे हुए और समोशरण में उनके स्वरूप का विचार करते हैं। फिर 5 प्रकार की जो धारणाएं हैं उन सबको करते हैं। ये क्रम क्रम से जो है इस तरह की पूरी प्रक्रिया है भैया, वो इतनी सहज नहीं है, पर आप तो इस तरह से ही इतना जितना ज्ञान होगा उतना अधिक जो है वो आप चिंतन कर सकेंगे, और चिंतन की निरंतर जो प्रक्रिया है वही हमें एकाग्रता भी ला देती है। उसी एकाग्रता का नाम ध्यान है। और जब हम 5 इंद्रियों के विषयों से विमुख हो जाते हैं और मन को एक जगह एकाग्र कर देते हैं तो उसी को हम आत्मानुभूति कह लेते हैं, और क्या। 5 नहीं तो हमको हमेशा जो है अपने शरीर और मन और अपने इंद्रियों के विषयों की ही अनुभूति होती रहती। उनसे जब हम विराम ले लेते हैं और मन में किसी भी पंच परमेष्ठी वाचक कोई भी मंत्र का निरंतर स्मरण करते हैं, उसका विचार करते हैं, तो उनसे हम थोड़ी देर के लिए विमुख हो जाते हैं, तब जो अनुभव होता है वही अनुभव है भैया। इससे अधिक और क्या कहूँ। 1 वर्ष में 1 बार क्षेत्र के दर्शन और 1 बार साधु के दर्शन का नियम लेता हूँ। बहुत अच्छा। एक को छोड़कर मेरे सभी के प्रति अच्छा भाव रहना रहेगा, अच्छी बात है। जिससे विवाह किया है उसके छोड़ करके, ये भी ये जिसने नियम लिया भैया कायस्थ कर लो, और क्या। 1 वर्ष में 1 बार क्षेत्र का दर्शन और साधु के दर्शन। आत्मान्वेषी के मायने क्या होता है? आत्मा का अन्वेषण करने वाले, आत्मा को खोजने वाले या कि आत्मा का अनुभव करने वाले को आत्मान्वेषी कहते हैं। जिसने आत्मा को खोज लिया है या कि जो आत्मा की खोज में निकला है, अर्थात आत्मा की खोज, कहीं जाना तो है नहीं खोजने के लिए, अपने भीतर ही आत्मलीन होना है। तो आत्मलीनता कहें, आत्मा की खोज कहें, आत्मान्वेषण कहें, बात तो एक ही है, आत्मानुभूति भी कह सकते हैं। आज प्रातः के प्रवचन में संसार भाव और लोक भावना को आपने समझाया, फिर से बता दीजिएगा। हम उस समय शायद उपयोग आपका उस समय कहीं और चला गया होगा। हाँ ठीक है, दोनों में अंतर है। देखो ऐसा है, संसार भावना में क्या पढ़ते हैं अपन, याद करिएगा। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगाया। सब जीव संसार में सुख मान करके संसार में रहते हैं, पर संसार की वास्तविकता क्या है? संसार में सुख नहीं है। इसका मतलब जो इंद्री सुख है उसको हम सुख नहीं मानते। हम तो उस इंद्री सुख से परे जो अतींद्री सुख है उसको ही सच्चा सुख मानते हैं। संसार में वो नहीं मिल सकता। यहाँ चारों गतियों में जीव अपनी अज्ञानता के कारण दुख उठाता है, है? और पंच परावर्तन करता है। जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है, और दुख किसी को हो या ना हो भैया, लेकिन जन्म और मरण के दो दुख तो सबके माथे लगे हुए हैं। कोई भी संसार में रहेगा, संसरणम इति संसारा, आवागमनम, जहां आवागमन लगा हुआ है अर्थात जन्म और मरण का चक्र है, वही तो संसार है। तो ऐसे संसार के बारे में विचार करना, और एक विचार है संसार के बारे में, अरे देखो यहाँ पर कभी पुत्र ही पिता हो जाता है, कभी पिता पुत्र हो जाता है, कभी माता बहन हो जाती है। यहाँ जितने रिश्ते हैं वे सब जो है और एक जन्म के हैं, अगले जन्म में वे ही सब जीव शत्रु मित्र हो जावे अगले जन्म में, और कौ मित्र जो है वो शत्रु हो जावे। ऐसा भी संसार का विचार करना, ये संसार भावना है। और लोक के स्वरूप, उसके आकार प्रकार का विचार करना, और इस लोक को कोई बनाता मिटाता नहीं है, फिर मैं क्यों इस संसार में और किसी भी चीज़ का कर्ता भोक्ता और स्वामी हो जाता हूँ, ऐसा विचार। धीरे से आराम से हम चलते रहेंगे क्वेश्चन आंसर, और आप उठ के बैठते रहेंगे, ये अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो। रात को सोते समय कितने नौकार मंत्र बोलना चाहिए? हाँ बेटा, वो बन नहीं पाए। तो तेज आ गया पानी। जो लोग पर्स उठा रहे हैं वे भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, जो लोग पर्स उठा के रख रहे हैं वे भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वे दूसरे कल सुबह गीले ना हो जाएं लोगों को बैठने के लिए। देखो हाँ, मैं ये देख रहा था कि वो सब छोड़ करके और किसी को चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग उनको चिंता है कि सुबह से बिछाना पड़ेंगे, यही है। अच्छा, जल्दी से बैठो भाई सब। रात को सोते समय कितने नौकार मंत्र बोलना चाहिए? कम से कम 9 नौकार तो बोलना ही चाहिए। 9 बार नौकार मंत्र पढ़ के एक काय सर के करके सोना चाहिए। और वैसे तो अच्छा है कि हम नमोकार करते करते और सो जाएं तो बड़ा मजा रहता है। नमोकार करते करते सो तो जब नींद खुलती तो ऐसा लगता है जैसे हम कर ही रहे थे। हाँ, हम तो बीच में सो ही नहीं, ऐसा लगेगा। और जो कि 5 घंटे सोकर के उठे हैं फिर भी लगेगा जैसे कि नमोकार चल रहा हो उसमें। इसलिए तो लिखा है कि जो आते जाते उठते बैठते सोते जाते हर अवस्था में पंच नमस्कार का स्मरण करता है वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा लिखा हुआ। इसलिए कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो करना ही चाहिए, और संभव हो तो लगातार करें। सुबह नींद खुलने के बाद भगवान का स्मरण सोते हुए करने में दोष तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटे लेटे भगवान का स्मरण करने में, अरे अपने भगवान बहुत सीधे साधे, बुराई बुराई नहीं मानते वो वो नाराज वाराज नहीं होते, उनको आते नहीं, गुस्से नहीं आता, उनको वीतरागी हैं वो इसीलिए तो। और अपने को भी अच्छी बात याद करने में थोड़ी दोष लगेगा। सुबह घूमते हुए लगभग आधे घंटे लगता है, उस समय चलते चलते भगवान का स्मरण या नौकार का घोष करना, नौकार करना दोष तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा कि चलते हुए भी आते जाते हुए भी खाना खाते समय भी पंच नमस्कार अंदर चल सकता है, और आहार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उस समय। अच्छा ही है भैया, ये तो आप अच्छा करते हैं। स्टेशन के मंदिर में एक मूर्ति भगवान की 2 इंची 1-1 इंची की किसी ने पीतल के शास्त्रों की अलमारी में रखी है नीचे के तल में, क्या उचित है? क्या क्या पता भूल चूक कुछ हो गया होगा भैया, वो 1 इंच 2 इंच की प्रतिष्ठा नहीं हो रही होगी। कोई कोई पंडित जी 9 इंच से छोटी प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, तो शायद उन्होंने प्रतिष्ठा नहीं करी होगी। तो अब क्या करें, लेके आए हैं प्रतिष्ठा नहीं हुई तो धर दो मंदिर में, अप्रतिष्ठित रखी होगी, ऐसा भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। आपने बताया था कि सनमाइका शुद्ध है, नहीं आप पूरी बात नहीं सुनते हमारी, आप पास में आके बैठा करें यार। हाँ, हमने सनमाइका अशुद्ध थोड़ी कहा था, हम सनमाइका तो बनते हुए देख के आए हैं, उसमें थोड़ी दोष है। जो सनमाइका चिपकाते हैं उसमें जो एडहेसिव है उसका चिपकाने का फेविकॉल, उसमें दोष है भैया। अगर मंदिर में चौकियों में सनमाइका लगा है, कुछ लोग पूजा करते हैं, हाँ, तो सनमाइका अगर उसमें पेस्ट किया तो अलग, और कई बार सनमाइका लगा के यहाँ से चारों तरफ पट्टी लगा देते हैं वो, हैं, फ्रेम कर देते हैं उसको, तो उसमें काय को दोष है फिर? उसमें कोई दोष नहीं है। आप यही चीज़ें देखते रहते हैं क्या, गड़बड़ सड़बड़ वाला? नहीं, ठीक है। यदि किसी ने नियम लिया हो कि मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाएंगे,
बार बार मुंह जूठा नहीं करेंगे, और अगर वो चाय पी ले या खाना खाते समय बीच में से उठकर वो फिर खाना खाने लगे तो उसका नियम टूट जाएगा क्या? नहीं, आप तो बैठे बैठे सुबह से शाम तक खाते रहो, नहीं टूटेगा। उठो बस, नहीं बस जी, अच्छा सीख लिया। तो उठ गए अगर तो गड़बड़ हो गई। अब माँ है और वो सबको जिमा करके खाना खाने बैठी है और उसको नमक कम पड़ गया तो उधर अलमारी में रखा हुआ, उठ के उठा के और खाएगी कि नहीं खाएगी तो हो जाएगा क्या? नहीं, घूमते घूमते नहीं खाना चाहिए, ऐसा है। अब पास में रखा हुआ है, 10 कदम चौके में ही सामान रखा हुआ है, वहाँ से उठा करके ले आए, परोस लिया, अपने ही को परोसना, अपने ही को ही खाना, तो क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं कि इधर खा रहे थे और मुंह में चबाते चबाते और वहाँ तक दौड़ करके वो टेलीविज़न चालू करके आ गए और फिर बाद में फिर खाने, तो गड़बड़ हो गया। हाँ तो गड़बड़ हो गया फिर, नहीं तो हम दोनों चीज़ बता देते हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। तत्त्वार सूत्र में मोक्ष तत्व पर मात्र 9 सूत्र हैं। मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है, किंतु उसके संबंध में हमें शास्त्रों में अधिक विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। सिद्धशिला अपेक्षाकृत छोटी होते हुए भी वह अनंत आनंद सिद्ध भगवान विराजमान है। आपकी चिंताएं बहुत अच्छी हैं। हम रुक नहीं पाते जवाब देने से, जो है पूरा पढ़ना चाहिए हमको, इतना पेशेंस नहीं रहता, गड़बड़ है वैसे, अब पूरा पढ़ता है। आशरीरी चेष्टा रहित होते हुए भी वे अनंत सुख,
अनंत वीर, अनंत दर्शन आदि गुणों से युक्त हैं। निजानंद में रसलीन ऐसे सिद्ध भगवानों के सुखों, शक्तियों, मोक्ष के स्वरूप आदि पर कृपया कर एक दिन प्रातःकालीन प्रवचन देने का विचार करें, ताकि विषय और अधिक स्पष्ट हो सके। आपकी आज्ञा मान्य है। अब लेकिन हमारी उतनी बुद्धि चलेगी तो चल जाएगी तो बता देंगे, पर हाँ बहुत विस्तृत नहीं मिलता है। मोक्ष तत्व के बारे में, मुक्ति के बारे में लिखा हुआ है, अरस मरूब मगंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मन दिप्त संथानम। शुद्ध जीव का स्वरूप तो यही है। अब इसको जितनी आपकी ज्ञान की क्षमता हो उससे जो है इसको आप विस्तार करते चले जाइएगा, पर है तो इतना ही। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, भैया सब कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। अब इस पे क्या चर्चा करें, बंधन की चर्चा, संसार की चर्चा तो बहुत करी जा सकती है, लेकिन बंधन के अभाव को तो क्षण भर में, और जैसे कि अंधेरे की चर्चा बहुत करी जाती और एक किरण रोशनी की आई और सारा अंधेरा गायब हो जाता है, क्या करें? इसलिए उस अनंत सुख का वर्णन तो वो तो गूंगे का गुड़ है कहना चाहिए ऐसा। इसलिए जिनको आत्मानुभूति होती है वे कुछ कहते नहीं हैं, थोड़ा बहुत संकेत देते हैं कि आप भी आगे बढ़ो और फिर उस अनुभूति को प्राप्त कर लो। अकेले विचार करने से और काम नहीं चलेगा, फिर भी विचार तो करना चाहिए। मैं आपके प्रश्न को टाल नहीं रहा हूँ, पर मैं खुद विचार कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। सिद्ध भगवान एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की क्या कथा, नमो सिद्ध अनंत नो, कैसा उनका स्वभाव। मैंने इसका मतलब यह है, मैं सोचता हूँ कि छोटी सी जगह में अनंत अनंत जीव रह जाते हैं, इसके मायने क्या है कि शुद्ध जीव एक दूसरे के लिए बाधक नहीं बनते हैं। जब तक बाधक बन रहे हैं तब तक हम अशुद्ध हैं, इसका मतलब। और जब शुद्ध हो जाते हैं तो एक में ही अनंत, एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, बताइए ऐसी शुद्ध वस्तु का क्या विशेष और अपन वर्णन करें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप जैसा चाह रहे हैं, इस प्रश्न को मैं अलग रखता हूँ, विचार करूंगा कभी अगर बना। अभी तो मैं कल के लिए चिंतित हूँ कि कल क्या करूंगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो एक बना बनाया विषय था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर चर्चा करी और अनुप्रेक्षा पर चर्चा करी, आज अनुप्रेक्षा भी चर्चा पूरी हो गई। अच्छा, जाने का कुछ अभी बन नहीं पा रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं। एक माता जी मिली थी हमको, हम तो ऐसे ही मजे की बात कर रहे हैं। एक माता जी मिली तो बोलती, वो श्वेतांबर माता जी थी, तो बहुत अच्छा हंसवाती थी वो, तो बोलती कि महाराज साहब हम तो एक गाँव में खूब चर्चा होती थी, तो बोलती कि महाराज साहब हम तो एक गांव में 10 ही दिन रुकते हैं, हमने कहा ऐसा क्यों करती हैं माता जी आप एक गांव में दसी दिन? बोले हमारे पास दसी प्रवचन है महाराज साहब, क्या करें दसी प्रवचन है हमारे पास, तो जब दस प्रवचन पूरे हो जाते तो हम दूसरे गांव चले जाते हैं क्योंकि वहां कहां तो नहीं है फिर तो हमको भी अब सोचना पड़ रहा है कि और कहां से लाएंगे और, पर फिर भी उपशम और उपसामना में अंतर, ये कठिन वाला क्वेश्चन मत पूछो भैया, दोपहर के क्वेश्चन शाम को पूछते, मैंने एक बार और कहा था उपशम और उपशमकरण या उपसामना, इन दोनों में अंतर तो है भैया, लेकिन कितना ही सरल करूंगा सबके समझ में नहीं आएगा, अकेले आपके समझ में आएगा। किस दिन बैठ करके 4 बजे इस पे विचार कर लेना। ज्यादा बोलने, ज्यादा गुस्सा करने से ऊर्जा खत्म हो जाती, ज्यादा गुस्सा करने से तो ऊर्जा जरूर खत्म होती, लेकिन क्षयोपशम हो और उसका उपयोग न किया जाए और पशु के समान मौन रहा जाए तो कोई ऊर्जा का संचय नहीं होगा। अगर जो है मुंह पे पट्टी बांध करके और लपेट लपाट करके और बैठ जाने से अगर ऊर्जा बढ़ती होती तो अपन तो भोजन वोजन का त्याग करके और बैठ जाते एक कोने में, फिर देखें कि कहां से कितनी तकती शक्ति आती, वो होते ही नहीं वैसा, अब क्या करें। हाँ, गुस्सा करने से जरूर ऊर्जा की क्षति होती है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक और धर्मामृत का पान करना और दूसरे को कराना, अनर्गल वचन नहीं बोलना, राग द्वेष से युक्त वचन बोलने में तो क्षति होगी, हाँ निर्मल परिणामों के द्वारा अगर वचन बोले जाएंगे तो क्षति नहीं होगी। राग द्वेष करेंगे और फिर वचन बोलेंगे, क्रोध लोभ हास भीरुत प्रत्याख्यान अमिचि भाषणम चपंच, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको सत्य का पालन करना है उसके लिए क्रोध से भीरुत से हास हंसी मजाक में ऐसे वचन नहीं बोलेंगे, अनुवीची भाषण आगम के अनुरूप वचन बोलने में कोई क्षति नहीं होती। लेकिन हम राग द्वेष करते हैं तो हमेशा क्षति होती है भैया, ऐसा हमने सुना था, आपने ठीक सुना है लेकिन उसमें संशोधन कर लीजिएगा। कृपया इस पद का अर्थ बताने की कृपा करें। हाँ, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौ पद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महतैः प्रोक्त महर्दभिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्प्रसति चामतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। इसका अर्थ आप बता दें। ये तत्वार सूत्र में लिखा है भैया, और सुनने में ये आता है, पढ़ने में आया कि सबसे पहले इंद्र गौतम स्वामी को लेने के लिए गया था कि कैसे इनको भगवान महावीर स्वामी के पास में लाएं, जिससे कि ये गंधर्व पद पर पहुंच करके और भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन होने को है और खिरी नहीं है, तो यही पद जो है वो इंद्रभूति गौतम के सामने जाकर के ब्राह्मण के वेश में, और इंद्र सौधर्म इंद्र ने यही पद बोला था कि इसके मायने क्या, इसका अर्थ बता दो, तो वे चकरा गए थे, जबकि बहुत जानते थे वे, वेद वेदांग के पाठी थे, लेकिन चक्कर में आ गए कि इसके मायने क्या है, तो कहते हैं कि हमें तो नहीं मालूम। तो बोलते ठीक है, फिर आपको नहीं मालूम तो सुना है कि कोई भगवान महावीर तीर्थंकर हुए हैं, उनको केवल ज्ञान हो गया, वहीं जाते हैं उनसे पूछेंगे। अच्छा, वो बता देंगे क्या? हाँ, सुनते तो हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, बता देंगे। अरे चलो, तो फिर हम भी चलते हैं, देखें क्या बताते हैं इसका अर्थ। उनने कहा हम यही तो चाह रहे थे, चलो संग। तो उनको ले करके फिर जो है इसी पद के अर्थ के लिए आए थे, ऐसा आता है, जन कथा जैसी आती। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तीनों कालों में 6 ही द्रव्य होते हैं, 9 पद सहितम 9 ही पदार्थ होते हैं, षटकाय जीव कितने हैं, 6 प्रकार के हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, और लेशाएं भी 6 ही हैं, पंचान्य चास्तिकाया, और पंच जो हैं वह अस्तिकाएं हैं, व्रत समिति, व्रत भी 5 हैं, समितियां भी 5 हैं, गति गति भी 5 हैं, अगर हम 4 गतियों से पार पंचम गति को जोड़ लें तो, और ज्ञान भी 5 ही हैं, सम्यक ज्ञान तो 5 ही हैं, मति श्रुता अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, और चारित्र भी 5 हैं, सामायिक क्षेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम, ये सब जो है पांच पांच हैं, इति एतन मोक्ष मूलम, ये सब मोक्ष के मूलभूत कारण हैं। त्रिभुवन महतई है प्रोक्त महर्द विरीशई, और इनको किसने कहा है? किसी आम आदमी ने नहीं कहा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, तीनों लोकों में जिनकी महिमा है, तीनों लोकों में जो पूज्य हैं, ऐसे अरहत भी प्रोक्तई है, ऐसे अरहंत भगवान के द्वारा इन सब का स्वरूप जैसा कहा गया है, उनके बताए हुए अनुसार उनके द्वारा कहे गए जैसे स्वरूप है, वैसा ही जो प्रत्येति, वैसा ही जो अपने अंदर प्रतीति लाता है, वैसी ही श्रद्धा करता है, वैसा ही उनका अनुभव करता है। स्पृशति चा कहते, ऐसा जो बुद्धिमान, ऐसा जो ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष है, वही शुद्ध दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है, ऐसा अर्थ जो है वो इसका है। भैया अच्छा पूछा आपने, आपके एक प्रश्न को बाद में बताऊंगा, बाकी तो हमने बता दिए। आपके आशीर्वाद से हमारा रात्रि में भोजन छोड़ने का नियम पिछले 7-8 वर्ष से है। बहुत अच्छा, 8 वर्षों से आलू प्याज भटा गोभी आदि भी नहीं खाता, किंतु उन्हें गुरु के सामने छोड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। इन उपरोक्त वस्तुओं का जीवन भर छोड़ने का नियम लेना चाहता हूँ। दोनों महाराष्ट्र आपका गंजवासौदा में चौमासा हो, इस भावना से चौमासे तक बाजार में बनी हुई सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं को छोड़ने का भी नियम लेना चाहता हूँ, इस भावना से लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसी भावना। हाँ ऐसा नहीं नहीं हो वे, मतलब उनकी भावना देखो, मैं तो 2-3 दिन से यही देख रहा हूँ, अलग अलग ढंग से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देखो भैया, अगर धर्म ध्यान करने की ऐसी भावना बनी रहे तो अपना कल्याण होने में फिर देरी नहीं है, हैं? आप ऐसा नियम ले रहे हैं तो ले लीजिएगा, कोई बड़े व्यक्ति होना चाहिए, लाइटिंग से तो यही लग रहा है, वहीं बैठे, हाँ वहीं बैठे बैठे ले लीजिएगा, मैं कायस्थर कर लेता हूँ। आप लोगों के नियम लेने से आपको जो भी फायदा हो या ना हो, पर अपने को कायस्थर करने का मौका तो मिल ही जाता है, इतना फायदा तो अपने को फोकट नहीं होता है कि नहीं। सभी श्रावक श्राविकाएं बैठे महावीर विहार में चतुर्मास के लिए पुकार कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद की चिंता में हैं, कब महाराज हमको चतुर्मास का आशीर्वाद दे दें जल्दी से जल्दी। अरे वाह, आचार्य श्री तक हम लोगों की भावना भी पहुंचती तो होगी, हमें विश्वास है कि आप कहेंगे, भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। मैं इतने ही मैं खुश हूं कि मानो आपके यहाँ पर हो ही रहा है चतुर्मास, है कि नहीं? अब ये और क्या है, अब ये तो पानी गिर रहा है और हो ही रहा है, अब और क्या। इतने हमने सोचा था कि अब हम इतने दिन तक रुकेंगे, 15-20 दिन अक्षय तृतीया तक, अक्षय तृतीया के बाद धीरे से खिसकेंगे, नहीं होगा तो कम से कम 1 महीने दे देंगे, फिर उसके बाद खिसकेंगे, लेकिन वो सब कुछ ना कुछ संयोग ऐसे बनते रहे। फिर आचार्य श्री के पास से ही आ गया कि अब 27 तारीख तो आ ही रही है, अब काय को आकुलता करो, तो हमने भी छोड़ दिया आकुलता, और क्या। अच्छा ठीक है, घड़ी रखी है मेज पर, बजा रही है, अरे इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, ये तो एक कविता जैसी लिखी बस। कर्ता और अभिनय में क्या अंतर है, समझा दीजिएगा। अच्छा हाँ, वैसे अच्छा प्रश्न है, एकदम सहसा समझ में नहीं आया था। कर्तापना और सिर्फ अभिनय करना, यहाँ पर हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, अगर ऐसा मान करके देखो, जो एक्टर रहते हैं वे कभी कभी कुछ भी तो बन जाते हैं, हैं? जो कलाकार होते हैं, लेकिन ओरिजिनली वे नहीं रहते वैसा, और ना अपने को वैसा वे मानते हैं, वे बस उतनी देर जितनी देर रंगमंच पर हैं उतनी देर के लिए अपने को वैसा मान लेते हैं, एक मेक हो जाते हैं, पर वास्तव में वे नहीं होते। हमको भी यहाँ पर कर्ता बन के नहीं जीना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, नहीं मैं तो सिर्फ जो है मेरा स्वभाव तो अलग ही है, मैं तो सिर्फ मनुष्यपने का अभिनय कर रहा हूँ, कभी देवपने का अभिनय करता हूँ, कभी नारकीपने का अभिनय करता हूँ, कभी पशु और तिरंच पर्याय का अभिनय करता हूँ, ये सब मेरे अनुभव हैं और अभिनय हैं, एक तरह से मेरी क्या कहें उसको, नाटक जैसा है, जैसे नाटक में पात्र अपना अपना रोल अदा करते हैं, उसी तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये बिल्कुल। प्रश्नोत्तरी के प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हम उनका ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इनाम आपको जीतना है, अपन को तो कुछ मिलने मिलने वाला है नहीं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न निकलते हैं ये प्रश्नोत्तरी के। हाँ, लक्ष्मण वो तो डिटेल में लिखना पड़ेगा, लक्ष्मण के बाणों में ऐसी क्या चीज थी जिससे बहुरूपिणी विद्या का शरीर भी जर्जर जर्जर हो गया, बहुरूपिणी विद्या रावण के शरीर से कैसे निकल भागी। बहुत अच्छा, पद्म पुराण पढ़ें। और क्या, अभिराम कौन से थे, और ये भी प्रश्न हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमें उसका जवाब देने नहीं था। सहस नाम का पाठ या स्वाध्याय रात्रि में किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। ये एक प्रश्न आज नए किस्म से आया है कि मैं 4 महीने तक गंज वासोदा में महावीर विहार में आपकी भैया व्रत करूं और आहार देऊंगा, ऐसा नियम लेता हूँ। ऐसा दे ही कौन रहा हो। जयपुर ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइएगा भैया, अपनी जिंदगी के बारे में तो पूरा ठीक से मालूम नहीं है, दूसरे के बारे में इतनी जानकारी ना हम रखते हैं। हमने कल भी कहा था कि आप हमें लड़वा नहीं सकते किसी से, इतना तो पक्का है। हाँ, ना आप हमें श्वेतांबरों के बारे में प्रश्न पूछ के उनसे लड़वा सकते हैं, ना आप हमें 20 पंथ 13 पंथ ना तारण पंथ वालों से के प्रश्न पूछ के लड़वा सकते हैं, ना सोनगढ़ और कहान पंथ के प्रश्न पूछ के लड़वा सकते हैं। ये सब लड़वाने की चालें हैं, कसाई की चालें हैं कि इनके बारे में बताइएगा, एक आध मुँह से स्लिप हो जाए कोई चीज़ तो बस महाराज जी ऐसा कह रहे थे और फिर उनको 4 बातें सुनाएगी। तो आप इससे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप हिला हिला करके खूब रात 12 बजे भी मुझे उठा के किसी के बारे में पूछे हुए तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, फंसने वसने वाला नहीं हूँ। कसाय करने के लिए घर नहीं छोड़ा भैया, कसाय मंद करने के लिए और कसाय को जीतने के लिए छोड़ा है। ये सब प्रपंच है और कुछ नहीं है, ये मत मतांतर इत्यादि हमारी अपनी मति का भ्रम है और कुछ नहीं है। हमें सबसे प्रेम बना करके चलना चाहिए, हम बहुत थोड़े से लोग हैं और उसमें भी हम एक दूसरे से कट पिट करके अलग अलग हो करके कैसे रहेंगे, इतना तो विचार करना चाहिए। अरे भैया, जिसको जो जिसमें अपना कल्याण लगता है वो उस मार्ग को अपनाए, पर हम उनसे द्वेष क्यों रखें, हम तो उससे प्रेम ही रखेंगे। कुंती जो है अपने 5ों बेटों के लिए और वनवास देने वाले दुर्योधन से मिलने गई थी, विदुर ने कहा कि क्यों जाती हो वहाँ बुआ, जब उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह किया तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया था। ये महापुरुष हैं कि उनके मन का द्वेष नहीं मिटा सकती तो क्या मैं अपने मन को भी मलिन होने दूँ, मैं उनका प्यार पाने नहीं जा रही, मैं तो अपने मन का द्वेष मिटाने उनके पास जा रही हूँ। बताइएगा, मैं इतनी गई बीती नहीं हूँ कि अपने से द्वेष रखने वाले से भी प्रेम न रख सकूँ। ये शब्द हैं उनके, और अपन जो है इसी में पड़े हुए हैं, इसके बारे में उसके बारे में। अरे भैया, अपने आत्मा के कल्याण के बारे में जैसे बने तैसे उपाय करो, हैं क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ सीख लो जिससे कि जन्म मरण का ये चक्र मिट जावे, और दुनिया भर की बातें जानने से कोई लाभ नहीं होने वाला, कौन क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, बादे बादे चा जाए थे, माने जितने लोग हैं उतने प्रकार की मान्यताएं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मत अलग अलग हो सकते हैं, मन तो एक होना चाहिए। हाँ बेटे, नियम लेना। हम अष्टानिका का व्रत लेना चाहते, पापा ने दिया, दीदी ने दिया, हम अष्टांग का व्रत लेना चाहते किंतु सर्विस के कारण और सांस ठीक नहीं होने के कारण नहीं ले पा रहे हैं, कृपया उपाय बताइएगा। अष्टांगिका का व्रत जो है वो और कोई व्रत कर लीजिएगा जिसमें कि डेट फिक्स नहीं रहती है, भक्तांबर है जैसे तो उसमें तिथि वगैरह का नहीं रहता, अपने को जब फुर्सत मिली जब अवसर है तो उसमें कर लिया। अष्टांगिका वगैरह में तो ऐसा है कि अब 8 दिन तक उन्हीं दिनों में करना पड़ेगा, जैसे कि नमोकार है उसकी भी निश्चित है, भक्तांबर है इसका निश्चित नहीं है, 48 करना है, जब करना हो तब कर लें, ऐसा नियम ले लो आप। मैं क्योंकि सर्विस वाला मामला है तो उस हिसाब से करें। क्या पानी को गर्म करके मटके में रखकर पीने से पाप तो नहीं लगता? अब पिए ही रहे हो तो अब का पूछने, अब चुपचाप गर्म करके मटके में रख लिया,
ठीक है, सावक करे तो करे, लेकिन त्यागी व्रति न करे। बस इतना ही हम कहेंगे आप। सामान्य सावक करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन त्यागी व्रति के योग नहीं है। त्यागी व्रति को तो प्राणी संयम के साथ साथ इंद्री संयम भी रखना चाहिए। भाई ये बात अलग है कि कपड़ा अपड़ा लपेट के रख लिया भैया, थोड़ा एकदम ज़्यादा गर्म से तकलीफ होती तो थोड़ा सिरा लो पानी और का सिरा के पी लो। अब सिरा के नहीं मटका में धर के फ्रिज में, कल के दिन के लग के फ्रिज में धरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। मेरा 20 वर्षों से आलू प्याज बैगन गोभी गाजर मूली और सभी गणन चीज़ों का त्याग, दिन में दो बार ही भोजन करते हैं, पर इसका कोई संकल्प नहीं लिया। अब हम आपके सामने सबका आजीवन त्याग करते हैं, रात में 8 बजे तक पानी लेने का नियम लेते हैं, एक दिन में 10 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, बाजार की सभी चीज़ों का त्याग है, पर आपके सामने आजीवन ना खाने का संकल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, करो। कर लेना, इसका नाम दिग्व्रत है। ये कौन सा व्रत कहलाता है? गुण व्रत का एक भेद है ये। छोटे बच्चे 2-3 महीने के हैं, धर्म सभा में आते हैं तो क्या उनको उसका लाभ मिलेगा? उनको तो मिलेगा ही, उनकी मम्मी को ज्यादा मिलेगा। हाँ, और क्या, वो 2 महीने की वो गोद में लिए रहेगी और क्या करेगी, खिला थोड़ी सकती वहां वहां यहाँ वहां। तो उनकी मम्मी को उसने और दूसरी जगह भी ले जा सकती थी प्रपंच में, संसार के यहाँ लाई। कानों में कुछ वाक्य तो पढ़ते होंगे, ध्वनि तो पड़ती होगी, वहाँ का वातावरण, सिद्ध क्षेत्र पर पापी आदमी भी चला जावे तो मन शांत हो जाता है, नहीं हो जाता? क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, द्रव क्षेत्र काल और भाव। अब भाव तो भैया ऐसा है कि वो छोटा सा जीव है, उसके जैसे भाव होंगे तो वैसा कर्म बंद होगा, लेकिन द्रव क्षेत्र काल का निमित्त पाकर के भी तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। वही आ गया कि आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है, बहुत विनय से प्रार्थना है कि आप चतुर्मास नहीं पढ़ करेंगे। अरंत नाम वाली कविता या इंग्लिश की वही पोयम सुना दीजिएगा और देखिएगा, कृपा करके मना मत करिएगा, ऐसा लिखा है लिखा इन्होंने इतने बढ़िया से प्रेम से लिखा, अब बताओ फिर भी हम उनकी बात नहीं मान रहे। अब अभी कैसे सुना, अभी तो सुनाई थी, मुझ में इतनी बुद्धि है नहीं और माँ कहती हैं तो मानता भी नहीं, गलती हो जाती तो दूसरे लोग कहते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है, क्या करूँ। ये बात तो है सबके जीवन में होती, हमारे अपने लोग जो हमारे हितैषी हैं वे हमें कुछ समझाते हैं प्रेम से, हमारे समझ में नहीं आती जब हम ठोकर खाते हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर व्यंग करते हैं, तब फिर हमें पछतावा होता कि अरे हमने अपने हितैषी की बात मान ली होती तो आज काय को ठोकर खानी पड़ती, काय को और दूसरे लोगों को उंगली उठाना पड़ती। मुझे याद है कि पिता की उंगली पकड़ के रास्ते से चले जाते थे, तब सब लोग उनको नमस्कार करते थे तो मेरे से क्या कहते थे कि देखो जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया सब लोग मुझे नमस्कार क्यों करते हैं, मैंने दुकान पर बैठकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करी। सावधान रहना कि दुकान पर बैठो तो बेईमानी नहीं करना, अपनी साथ है कोई दूसरा, ऐसे नहीं चलना कि कोई दूसरा उंगली उठा ले, वो काम नहीं करना जिससे कोई दूसरा उंगली उठा ले। बस इतना विवेक रखो भैया तो फिर क्या, फिर ऐसा पछतावा नहीं होगा, आपको दुख भी नहीं होगा, करना चाहिए। जब आप इतना समझ रहे हैं अपने मन की बात आपने कही, किसी में वितरागता होकर सर्वज्ञ ना हो या सर्वज्ञ हो रितोपदेशी ना हो तो क्या वो शक्तिदेव हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो वितरागी हैं वे सर्वज्ञ भी होंगे
और वे हितोपदेशी भी होंगे, तीनों चीजें एक साथ होने वाली, साइमल्टेनियस नहीं, अमंग शब्द का यूज करेंगे, दो दो तीन के लिए शायद ना, बिद्बीन और अमंग दो शब्द होते हैं, बिद्बीन दो के बीच में, अमंग जो है वो